प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग दो, लेक्चर नंबर 56। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ श्रुता नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सुरसुरनरपतिवन्द्यने प्रविनष्टघातिकर्मणे प्रणमन करोहु धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वरिशेष तीर्थं करने सौ सिद्ध शुद्धासी ज्ञानदृगचारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवणि हो मनुजक्षेत्रे वर्ततारहंतने अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिये रिते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञानमु च पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्यनि जेनाति। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम शास्त्र है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। इसमें से हम यह दूसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं, प्रवचन सुधा भाग दो, उसके पृष्ठ संख्या 72 पर आ गए हैं। एक पैराग्राफ पढ़ा था हम, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रमण और मिच्छा में दुक्कड़म कर लेते थे वह सरल लगता था, जब वो संप्रदाय में थे, बचपन की बात बता रहे थे कल, जैसे उसमें अप्पाणम माने क्या और वोसीरे माने क्या इसकी खबर नहीं होती। आता है ना, उस अप्पाणम का अर्थ जो राग द्वेष का परिणाम है वह अशुद्ध आत्मा है, वह आत्मा नहीं, उसको मैं वोसीरे नाम भिन्न कर देता हूँ, वह मेरी चीज नहीं। हमने तो 10 वर्ष की उम्र में ये सब किया था, बहुत निवृत्ति थी न, उसमें ऐसा आता है कि काया को स्थिर करके, मौन करके, ध्यान करके अप्पाणम ओसीरे, परंतु अप्पाणम क्या ओसीरे क्या इसकी किसी को खबर नहीं। अप्पाणम का अर्थ यह है कि अंदर जो पुण्य पाप का दयादान व्रतकाम क्रोध का भाव है वह अशुद्ध आत्मा है, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूँ और मेरा ज्ञान स्वभाव आनंद स्वभाव है, ऐसे आत्मा में मैं एकाग्र होता हूँ, उसका नाम कायोत्सर्ग है। यानी अब जाके जब सच्ची बात हाथ में आई तब उन शब्दों में से भी सही अर्थ निकालने की कला आ गई है। कायोत्सर्ग का अर्थ काय का त्याग करना है। अब काया किसको कहते हैं? शरीर को भी काया कहते हैं और पुण्य पाप भी कारमण काया का भाव है, ऐसी बातें हैं। एक एक शब्द के बहुत अर्थ है, लेकिन इस समय में कहाँ चलता है, इस लोक में मेरे दूसरे लोगों में नहीं चलता है, ऐसा कहना है। यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में तो बराबर चलता है, यानी उन्होंने कहा यहाँ तो बराबर चलता है, अन्यत्र नहीं चल रहा है, यहाँ तो दांडी पीट कर चलता है। यहाँ थोड़े ही गुप्त रखनी है, यानी यहाँ कोई बात गुप्त रख के उपदेश हो ऐसी बात नहीं है। काया को ओसरा भी अर्थात जो कोई राग और दो बार हुआ पुण्य पाप है, राग और पुण्य पाप है, ये कार्मण काया है। शरीर तो औदारिक काया है, वह ओसरे नाम मैं छोड़ देता हूँ। किसमें रहकर छोड़ता हूँ? किसी में रहकर छोड़ देते ना, जिसको छोड़ना है तो किसमें, किसके आधार से छोड़ रहे? किसी का आधार, किसी को पकड़ा तो किसी को छोड़ा है ना? तो मैं ज्ञान और आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, उसमें रहकर मैं यह छोड़ देता हूँ, यानी मैं उससे छूटा ही हूँ, परंतु उसको मैंने अपना मान के रखा था, वो मैं उसको छोड़ देता हूँ। लोगों को ऐसे अर्थ की खबर नहीं है, हम भी उन दिनों में ये सब करते थे लेकिन अर्थ मालूम नहीं था, यानी अपने से वो बताते ना, हम करते तो सब थे परंतु हाँ बिल्कुल एक क्रिया करके कर देते थे। यहाँ कहते हैं कि क्यों ज्ञान और आत्मा एक है, अपना ज्ञान स्वभाव और आत्मा एक कैसे है? तो कहते हैं क्योंकि शेष समस्त, समस्त यानी अपने अलावा सब, यानी दूसरे सब आत्मा और दूसरे सब अचेतन जड़ वस्तुओं के साथ इस अपने ज्ञान स्वभाव का समवाय संबंध नहीं है, यानी उनके साथ इसका कोई संबंध नहीं, अपने गुण का गुणी के साथ संबंध है, परंतु इस गुण का यानी मेरा जो ज्ञान गुण है उसका दूसरे द्रव्य के साथ और दूसरे जड़ या चेतन के साथ संबंध नहीं है। नीचे अर्थ है समवाय, वो समयवाय हुआ, समवाय चाहिए, यह निकाल देना बीच वाला, समवाय संबंध किसको कहना? तो जहाँ गुण होते हैं वहाँ गुणी होता है, और जहाँ गुणी होता है वहाँ गुण होते हैं, क्योंकि गुणों के समूह को तो हम गुणी यानी द्रव्य कहते हैं, अर्थात वो समयवाय हुआ है, वो यह बीच में नहीं चाहिए, समवाय शब्द है नीचे से दूसरी लाइन में, आपने कहाँ किया ऊपर बराबर था। देखो हम 73 पेज पर आ गए, 73 पृष्ठ, अर्थात जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है, लॉजिक से न्याय से तो बात चल रही है, लेकिन यह विषय ही अभी तो गुप्त हो गया है, गुम हो गया है। यहाँ कहते हैं कि जो यह आत्मा है यह ज्ञान स्वभावी है, जैसे शक्कर है, क्योंकि जो वस्तु है तो उसको अपना स्वभाव होता ही होता है, और मैं आत्मा हूँ तो मेरा स्वभाव क्या है? तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। शक्कर है वह मीठा स्वभावी है, और शक्कर में हाथ का मैल लगता है ना, ऊपर का मैल जो है वह कोई शक्कर का स्वभाव नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा जानक ज्ञान स्वभावी गुणी है, गुणों का समूह गुणी है, ज्ञान स्वभाव यह गुण है, और उसका धरने वाला आत्मा गुणी है। यह ज्ञान स्वभाव अपने सिवाय दूसरे आत्मा में और दूसरे जड़ में नहीं है। आप पूछेंगे क्या दूसरे आत्मा में ज्ञान स्वभाव नहीं है? यह ज्ञान स्वभाव नहीं है, मेरा ज्ञान स्वभाव मेरे पास है, आपका आपके पास है, सिद्धों का सिद्धों के पास है, दूसरे के ज्ञान स्वभाव से मुझे कुछ लेना देना नहीं, उससे मैं जान नहीं सकता हूँ। मैं कितना हूँ? मेरा ज्ञान स्वभाव जहाँ वही तो मैं हूँ। ये क्या कह रहे? देखो दूसरे जन्म में नहीं है, यह कहा ना, देखो समवाय संबंध नहीं है, यानी पर के साथ, पर में पर आत्मा और बाकी सब जड़। जहां गुणी द्रव्य होता है वहां गुण होते हैं, जहां गुण नहीं होता, जहां ज्ञान गुण नहीं होता वहां गुणी यानी आत्मा को, यहां गुणी कहना ना, आत्मा नहीं होता। और जहां गुणी नहीं होता, धर्मी आत्मा नहीं होता, वहां गुण नहीं होते। धर्मी कहो गुणी कहो एक ही बात है। धर्मी यानी धर्म का धारक वो धर्मी, यहां गुण को भी धर्म कहने की पद्धति है ना? इस प्रकार गुण गुणी का अभिन्न प्रदेश रूप, दोनों का क्षेत्र एक ही है इसलिए उसको क्या कहेंगे, अभिन्न प्रदेश रूप संबंध है, यानी तादात्म्य संबंध है। अभिन्न प्रदेश रूप संबंध का अर्थ क्या किया, तादात्म्य संबंध, एक में एक है। शक्कर की मिठास और शक्कर दोनों का प्रदेश यानी क्षेत्र एक है। हमने जो द्रव्य गुण पर्याय की बात देखी थी ना चतुष्टय में, जितना बड़ा द्रव्य उतना ही बड़ा उसका गुण, क्योंकि हमने गुण की परिभाषा याद है आपको, गुण किसको कहेंगे, वो तो द्रव्य की परिभाषा हुई। गुण की परिभाषा
जो जो जिसका प्रदेश और हर समय रहता है
आप बताएंगे, गुण की परिभाषा, ये जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, जो द्रव्य का क्षेत्र है वही संपूर्ण भाग गुण का भी क्षेत्र है और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, यानी अनादि अनंत तक जो अवस्थाएं, कोई भी अवस्था क्यों ना हो वो गुण और द्रव्य का तादात्म्य संबंध है। दोनों का त्रिकाल है ना, दोनों का द्रव्य एक है, दोनों का क्षेत्र एक ही है और दोनों का काल भी वही अनादि अनंत है, इसलिए नित्य तादात्म्य संबंध कहेंगे उसको। यही बात यहाँ चल रही है, देखिए इस प्रकार गुण गुणी का अभिन्न प्रदेश रूप संबंध है, तादात्म्य संबंध है। शक्कर की मिठास और शक्कर दोनों का प्रदेश यानी क्षेत्र एक है, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी ज्ञान स्वभावी चैतन्य जलहर ज्योति स्वरूप, यह ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है, दोनों का क्षेत्र प्रदेश एक है। जहां गुण है वहां गुणी है और जहां गुणी है वहां गुण है, उसका दोनों का क्षेत्र एक है। यह शरीर वाणी मन का क्षेत्र भिन्न है, क्योंकि हम देख रहे हैं ज्ञान, हम कहते वो तो जीव दूसरे भाव में चला गया, ऐसा कहने की पद्धति ना, अन्यत्र चला गया तो उसका स्वभाव उसके साथ गया कि शरीर में रहा, हाँ साथ में है ना, उसी का स्वभाव उसके कभी जुदा हो ही नहीं सकता है। तो हम कहते वो प्राण चला गया, शरीर चाहिए, जीव चला गया, उसका अर्थ क्या है, जीव तो अपने स्वभाव में है, तो है ही है, तो जीव तो जुदा ही था तो जुदा हो गया, उसको जुदा था तब जुदा हुआ कि जुदा नहीं था उसको जुदा किया, जुदा ही था, जब यहां रहता था तब भी जीव तो जुदा ही था, शरीर जुदा है और जीव जुदा है। यहाँ कहें ना जड़ में जीव का ज्ञान स्वरूप स्वभाव नहीं है, यहाँ शरीर में रहते हुए भी जानने वाला तो जीव है क्योंकि उसका स्वभाव है और उसके जो जानने रूप कार्य हो रहा है वो जीव में हो रहा है शरीर में नहीं, परंतु जहां शरीर है वहीं पर अभी जीव है, इसलिए क्या लगता है, अरे कान ही आंखें ही देख रही है, ब्रेन ही जान रहा है, कान ही सुन रही है, ये भ्रमणा हो रही है उसकी। तो कहते शरीर वाणी मन का क्षेत्र भिन्न है, मिला 73 पेज ऐसी बातें है, लेकिन कान में तो पड़े प्रभु, यानी सुने तो सही तो उस पर सोच सकता है। इस प्रकार चेतन और अचेतन वस्तुओं के साथ समवाय संबंध नहीं है, किसका, मेरे ज्ञान गुण का, हाँ समवाय संबंध यानी जहां गुण है वहां गुणी है और जहां गुणी है वहां गुण है, यह समवाय संबंध है। ऐसा ज्ञान का संबंध आत्मा के साथ है यानी मेरे साथ है, परंतु समवाय संबंध पर के साथ नहीं है। चाहे तो सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा अरिहंत हो, परंतु यह अपना ज्ञान स्वभाव वहां नहीं है, उनका ज्ञान स्वभाव उनमें भले हो, होता ही है, हर एक जीव का अपना अपना ज्ञान स्वभाव है, परंतु मेरा जो है जिसको आत्मा कह रहे वो किसी अन्य में नहीं है। ऐसा कहकर यह कहना है ज्ञान स्वभाव यहां है तो यहां एकाग्र होना होगा। ज्ञान स्वभाव मेरा है, मेरे में है, तो वहीं पर एकाग्र होना है। यह ज्ञान स्वभाव दूसरे में नहीं है तो वहां एकाग्र नहीं होना, ऐसा है। ये कैसी बातें हैं? कोई ऐसा कहता था कि यह कहां से निकाला? सोनगढ़ वालों ने कुछ नया धर्म निकाला है। कुछ नया नहीं है बापू, अनादि से वस्तु ऐसी ही है और भगवान ऐसे ही कहते हैं। बिल्ली को बच्चा होता है ना, बच्चा, तो बिल्ली 7-8 दिन के बाद बच्चे को दूसरी जगह ले जाती है, देखा है, 7 बार घुमाती है। ऐसा क्यों? कि मूल में तो वहां के बच्चे लोग हाथ में ले और खेले, फिर 7 दिन के बाद दूसरी जगह ले जाती है। ऐसा करते करते 7 जगह पर ले जाती है और 49 दिन के बाद 49 नहीं, यहाँ तो हिंदी है ना, हिंदी है, 49 दिन के बाद, ये हिंदी वाले यहाँ हिंदी चल रहा है ना, उस बच्चे की आंख खुली तब उसे ऐसा लगता है कि वो हो। देखो बिल्ली को उठा कर ले जाती तो हमने देखा था, वो हमेशा कहते पकड़ पकड़ में फेरे, गुरुदेव कहते थे। बिल्ली अपने बच्चे को भी उठाकर अन्यत्र ले जाती है और बिल्ली चूहे को भी पकड़ती, मुंह से ही पकड़ती है, तो पकड़ पकड़ में फेर है कि नहीं? चूहे को अरे वो जोर कस कर पकड़ेगी, वो भाग नहीं जाएगी, उसको तो खाना है, और बच्चे को कैसे पकड़ती तो मुंह से ही है। तब उसे ऐसा लगता है कि ओहो ये क्या, जब आंख बंद थी तब बाहर की दुनिया नहीं थी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आंखें खुली तब मालूम हुआ ये दूसरी चीज भी है, समझ में आया? ये तो चूहे के बच्चे तो देखे मैंने, तो जन्मे हुए उनके तो आंख बंद रहते हैं, बाद में वो आंखें खोलते हैं। हाँ, इसे एकदम गुलाबी गुलाबी रहते हैं। क्या है, पहले घर में भी चूहे होते हुआ करते थे ना, वो तो कहीं ना कहीं उसके पिल्ले भी निकलते थे। हमारे घर में के चूहे क्या, चूहे, बिच्छू, सांप, हमने तो सांप भी पकड़े बचपन में, बहुत बार, एक दो बार नहीं, इतने लंबे लंबे, हाँ आंकड़े से नहीं पकड़ के रखना ऐसे कोई, हाँ चिमटा विमटा कुछ नहीं था, कोई भी लकड़ी फली कुछ भी ले उसके पकड़ना, वो डाल देगा खाली डब्बा, उसमें अंदर किस तरह से वो डाल देना, ढक देना, और फिर वो लंबा जाके ऐसे वो नाले में छोड़ देना। आजकल के बच्चे तो ये कॉकरोच दिखे तो भी टन 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 उड़े मारते। पुना में, पुना में, भवानीपेट, भवानीपेट है अभी, बहुत बड़ा। वो विषारी होते हैं ना। ये सुनना था ना अब नसीब में आपके, ये मार्ग मिलना था ना, ये मार्ग मिलना था। सब होता क्रमबद्ध, पर उसका निर्णय अपने स्वभाव की तरफ देख के होता है तो सारा क्रमबद्ध, परंतु ये देख देख कर क्रमबद्ध नहीं होता है। उसका निर्णय कब कहेंगे? जब हम स्वभाव को नक्की करेंगे, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान का स्वभाव कैसा है? सब कुछ जानने का है, भविष्य का भी और भूतकाल का भी, तो भविष्य की पर्याय सुनिश्चित है तभी तो जानेगा कि नहीं, कि जो नक्की नहीं है उसको जानेगा। यानी जो स्वभाव को नक्की करता है, यानी स्वभाव का अनुभव होता है, उसी का कर्मविरुद्ध पर्याय का निर्णय सच्चा है। तब तक वो तो हाँ, उसको तो शास्त्र से उसने जान लिया, बस इतना है कि सब कुछ क्रमबद्ध होता है, उसने स्वीकार कर लिया, परंतु उसका वो निर्णय तक नहीं पहुंचा है, शास्त्र से उसने कबूल कर दिया, बस इतना ही। देखो नीचे से दूसरी लाइन, यहाँ तो ये बिल्ली के उदाहरण यानी उसको दृष्टांत दिया है, वो आंख, उसकी आंखें बंद थी तो क्या दुनिया नहीं थी क्या? तो कहते आंखें खुली तो मतलब कि ये दूसरी अन्य चीजें भी है। ऐसे अंदर आत्मा में ज्ञान होता है तब ख्याल होता है कि अरे मैं तो यह आत्मा हूँ, समझ में आई बात? जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता तब तो यह मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान उसको नहीं होता। अभी आत्मा आत्मा कह रहे हैं परंतु वो उसका ज्ञान सच कब होगा? वो अपने आत्मा का अनुभव करेगा तब, तब उसने ये ज्ञान आनंद क्या है उसको जान लिया है, तब उसने वो आत्मा जुदा है और मैं जुदा एक स्वतंत्र पदार्थ, तो ये उसने जान लिया। यही कह रहे हैं कि तब ख्याल आता है कि अरे मैं तो यह आत्मा हूँ और यह पर चीज नहीं, यानी ये देह मैं नहीं हूँ, यह आत्मा मैं हूँ, ऐसे तब जाके उसको अनुभव से ख्याल में आ जाता है। हाँ, अपने यहाँ बच्चे लोगों के यह बिल्ली का दृष्टांत देते हैं। सात जगह बिल्ली के बच्चे को घुमाने के बाद जब आंख खुली है तो ऐसा लगता है कि यह जगत कहाँ था, यह सब क्या है, ये नया दिखा, नया हुआ? अरे पहले से था, तेरी आंखें नहीं थी इसलिए दिखता नहीं था। ऐसे प्रभु आत्मा में ज्ञान है, लेकिन जब तुझे इसका ज्ञान होता है तब तुझे ख्याल में आता है कि ओहो मैं तो आत्मा हूँ, ये राग और पुण्य पाप शरीर वाणी मैं नहीं, तब पता चला। और इसके लिए तो उसको सही उपदेश उसकी कंडीशन है, पर ये शरीर मैं हूँ मानने के लिए किसी उपदेशक की जरूरत नहीं, वो तो अनादि से चला रहा है बिना सिखाए, और सिखाने पर वो और पुष्ट होता है, उसको तो गृहित मिथ्या तो कहते हैं। ऐसे उपदेश देने वाले भी होते हैं ना। हाँ, यहाँ कहते हैं इसलिए जिसके साथ अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध है, यानी मैं और मेरा ज्ञान स्वभाव अनादि अनंत समवाय संबंध है। इस आत्मा के साथ ज्ञान स्वभाव का अनादि अनंत, अनादि ने आदि भी नहीं और अंत भी नहीं, ऐसा स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध है। वे स्वाभाविक स्वभाव से ही सिद्ध ऐसा है, यानी वो स्वभाव ही है, उसको कोई बाद में आके जम गया हो उसमें मिल गया हो ऐसा नहीं है। जहाँ भगवान आत्मा गुणी है वहाँ ज्ञान स्वभाव है, और जहाँ ज्ञान स्वभाव है वहाँ आत्मवस्तु है। देखो कितना आप कहेंगे वो कितनी एक ही बात 10 बार बताई तो कितना घोल घोल कर जैसा जो बच्चे को गूटी पिलाते हैं, हाँ यानी कितना बिल्कुल कंफर्म हो जाता है अपने भी में, ऐसा सब वकालत में आता होगा, वहाँ तो ऐसे कोई न्याय आते नहीं, यह तो भगवान की कोर्ट है, भगवान सब बात सिद्ध करते हैं। चीज क्या है तुझे मालूम नहीं, समझ में आया? अब कहते हैं ऐसे एक आत्मा का अति निकटतया, यानी जानन स्वभाव और आत्मा अति निकट है, दोनों के अभिन्न प्रदेश है, ज्ञान और आत्मा दोनों का क्षेत्र अभिन्न एक है, समझ में आया? अभिन्न प्रदेश रूप से अवलंबन करके प्रवर्तमान होने से ज्ञान आत्मा के बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता है, यानी आत्मा बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं हो सकता है। ज्ञान स्वभाव अपने आत्मा के अलावा अस्तित्व नाम हयाति नहीं रखता, यानी बिना आत्मा के उसकी सत्ता कहीं होगी और बाद में किसी चिन्ह से मिल गया और वहां पर उसे जानने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान आत्मा ही है, क्या कहा? जानन स्वभाव और आत्मा दोनों के प्रदेश यानी क्षेत्र भिन्न नहीं है, दोनों का क्षेत्र एक है। जो प्रदेश में ज्ञान है वहां प्रभु आत्मा है, जो प्रदेश यानी जिस प्रदेश में या जिन प्रदेश में, और जहाँ आत्मा है वही ज्ञान है। भाषा तो सादी है प्रभु,
क्षेत्र पे ही जोर ज्यादा दिया है, काल पे जोर नहीं दिया, जरा भी
ऊपर बता ना, आदि और अंत नहीं।
अच्छा,
ऊपर तो आ गया ज्ञान स्वभाव का अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध है, बता दिया ऊपर। भाषा तो सादी है प्रभु, पर मार्ग तो ऐसा है बापू। अभी तो आत्मा क्या और कैसा है कितना है उसकी खबर बिना उसे धर्म कहाँ से होगा। मूल में आत्मा ने मैं कौन हूँ ये तो नक्की करना है, ये मैं मनुष्य हूँ मानता है और फिर वो संयोगों के कारण मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ मान लेता है। मैं मानने में भूल है तो आगे की सारी भूलें ही चलती है उसकी, दुखी दुख है ना उसमें। तो मैं पना स्थापित करने में भूल कर दी, शरीर मैं हूँ माना तो शरीर की जो अवस्था हो मेरी अवस्था है तो रोना चालू, और उसी के लिए सारे उसके जो कुछ प्रयत्न उसी के लिए होते हैं। शरीर के लिए रिलेटिव है वो तो ये मेरे हैं, शरीर के अनुकूल उसके प्रति राग, इसके प्रतिकूल उसके प्रति द्वेष। यानी वो केवल एक नहीं, वो परंपरा पूरी दुख की परंपरा ही परंपरा है। एक मान्यता भूल भरी है, कौन सी, ये शरीर मैं हूँ। यहाँ तो ज्ञान स्वभाव वह मैं आत्मा हूँ ये पहले में पहले नक्की करना है, तब जाके धर्म शुरुआत होने की चांस है। क्योंकि केवल हमने मैं हूँ आत्मा हूँ कहने से कुछ नहीं होगा, उसमें एकाग्र होकर उसका अनुभव होगा तब जाके धर्म की शुरुआत होगी। तो कहते इसकी खबर बिना उसे धर्म कहाँ से होगा, किसमें एकाग्र होना है ना, कहते ध्यान करना है। अरे पर एकाग्र होना किसको, फिर ये चक्र है वो चक्र है वो सब बातें चलती रहती है। आत्मा की तो अभी खबर नहीं है तो किसमें एकाग्र होगा। ये करो दया पालो व्रत करो, दया और पालो के बीच में गैप चाहिए, कॉमा नहीं चाहिए। इन्हें आत्मा में एकाग्र होने से धर्म होगा, परंतु अभी उसको आत्मा क्या है वही बात पता नहीं उसको, वह तो राग की क्रिया है दया व्रत वगैरह, तो राग में एकाग्र होता है वह तो पाप अधर्म है। क्या कहा, ज्ञान में यानी स्वभाव में एकाग्र होना वो धर्म है, और ये किसमें एकाग्र हो रहा है, राग में पुण्य में। अभी पाप में तो होता होगा, अभी पुण्य की बात करते हैं, उसको तो अच्छा मानकर धर्म मानकर कर रहा है, उसी में एकाग्र भी हो रहा है तो ये तो अधर्म कर रहा है। पाप है बता ना, पाप है अधर्म है। तीन बात चली कि एक यह ज्ञान है, जानपना का स्वभाव गुणी का है, और गुणी है यह ज्ञान स्वरूप है, दो बात आई। अब इस ज्ञान में एकाग्रता होती है यह धर्म की पर्याय है, यह स्वभाव में जो एकाग्रता होती है वो धर्म की पर्याय है, करती एकाग्रता पर्याय उसी को यहाँ धर्म की पर्याय कहेंगे। इस ज्ञान में एकाग्रता होने से पर्याय में वितराग पर्याय प्रकट हुई, इस ज्ञान में नहीं इस ज्ञान स्वभाव में है ना, वह स्वभाव की पर्याय प्रकट हुई। ऐसे द्रव्य गुण और पर्याय तीनों एक स्वरूप हुए। क्या कहते हैं, द्रव्य और गुण तो तादात में तो थे ही थे, अब पर्याय भी वैसी हुई, स्वभाव जैसी पर्याय, स्वभाव पर्याय की बात है यहाँ पर। तो तीनों एक स्वरूप हुए, समझ में आया, ऐसी बातें। अरे रे प्रभु का मार्ग है उसमें शूरवीर का काम है बापू, यह कायर के काम नहीं है। कहते हैं अनित्यता पर जब है तब उसके द्रव्य, अभी ये कौन सी द्रव्य पर्याय ली, स्वभाव की, स्वभाव को लक्ष्य करने वाली पर्याय ली जिसमें वितरागता होती है, राग रहित पना, स्वभाव राग रहित है तो उसके उसमें एकाग्र होने से जो पर्याय उत्पन्न होगी वो जीव की कहलाएगी, वो राग रहित होगी। अब जो राग पर्याय में जो था वो तो उसको गौण करके उसका लक्ष्य छोड़ दिया है, वो तो अपने में है ही नहीं करके उसको तो अस्तित्व उसका जुदा बताया और स्वभाव को अपने में रखा, और जिस पर्याय ने स्वभाव का लक्ष्य किया वो पर्याय भी स्वभाव जैसी होगी, यानी द्रव्य गुण और पर्याय तीनों एक समान हो गए ना, ये कह रहे। नीचे है कुछ बैठने को? पेज नंबर 74 पर चल रहे, नीचे का पैराग्राफ लास्ट कहते कि ज्ञान आत्मा के बिना अपना अस्तित्व नहीं रखता है। यहाँ ज्ञान स्वभाव और आत्मा एक ही है, उसकी बात चल रही है। अर्थात जानपना का जो स्वभाव है उसकी हयाती अपने आत्मा के बिना नहीं रखता है, है अंदर, इसलिए ज्ञान आत्मा ही है। यह गाथा में यही बात हो रही है, ज्ञान आत्मा ही है कहें, और आत्मा ज्ञान भी है और सुख भी है, वीर्य भी है, ऐसा आगे कहेंगे। अब विशेष कहते हैं, और आत्मा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठान, अधिष्ठान या आधार, ज्ञान ही आत्मा कहा, यानी आत्मा से ज्ञान अभिन्न है। अब 75 पेज पर आना, लेकिन आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप नहीं है, ऐसा नहीं कहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, बीच में मात्र शब्द है और बहुत महत्व का है, मात्र नहीं, नहीं वो अन्य भी है ऐसा लेना उसका अर्थ। तो आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप नहीं है, आत्मा में तो अनंत गुण है यह कहते हैं। ज्ञान को तो आत्मा कहा, पर आत्मा को केवल मात्र सिर्फ ओनली ज्ञान स्वभाव ऐसा नहीं है, उसमें सुख भी है, वीर्य भी है, वो सभी सभी गुणों को ले लेना उसमें। और आत्मा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठान अर्थात आधार है, सुख शांति आदि जो अनंत गुण है उसका आधार आत्मा है। जैसे ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान है ऐसा यहाँ कहा, तो आत्मा मात्र ज्ञान है ऐसा नहीं, यह ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान भी है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भी है, शांति चारित्र वितरागता स्वरूप भी है, श्रद्धा स्वरूप भी है, ऐसे अनंत गुण में आत्मा है। इन शॉर्ट पूरे का क्या है, ज्ञान है वो तो आत्मा है, पर आत्मा है वो ज्ञान भी है, सुख भी है, श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, वितरागता भी है, जितने अनंत गुण है उस स्वरूप है। एक गुण को कहेंगे वो आत्मा स्वरूप है, और आत्मा है वो अनंत गुण स्वरूप है। हाँ। श्रोता धर्म करवो हो एमा आ बधुं शुं? समाधान, क्योंकि धर्म तो यही मानना था कुछ क्रिया में, कुछ व्रत उपवास करेंगे, सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे तो हो गया धर्म। समाधान, धर्म करना है इसकी तो बात चलती है, यहाँ जो ज्ञान स्वभाव आत्मा कहा यह गुणी है, गुणी और गुण का अभेद स्वभाव है। ज्ञान आत्मा कहा और आत्मा ज्ञान कहा, फिर भी आत्मा अकेले ज्ञान गुणमय हो तो ज्ञान द्रव्य हो जाएगा। क्या कहते हैं, आत्मा में एक ज्ञान ही एक अकेले गुण से ही द्रव्य हो जाएगा तो उसको गुण क्यों कहते, वो ही उसको द्रव्य ही कहेंगे फिर, एक ही गुण से द्रव्य बनता है तो द्रव्य हो चुका। ज्ञान स्वभाव आत्मा कहा तो अकेला ज्ञान स्वभाव आत्मा हो तो ज्ञान स्वयं आत्मद्रव्य हो गया, लेकिन द्रव्य में तो अनंत गुण है। ख्याल में आते हैं उनकी वो जो लॉजिक न्याय, लॉजिक से तो बात चलती है, यह तो शांति और धीरज का काम है बापू। आहा हा कहते हैं, ज्ञान आत्मा ही है यह बात बराबर है, लेकिन आत्मा अकेला ज्ञान स्वभाव नहीं परंतु अन्य धर्म स्वरूप है। अकेला शब्द मात्र शब्द महत्व का है, ज्ञान है वो आत्मा है और आत्मा है वो ज्ञान है, परंतु अकेला ज्ञान है इतना ही नहीं, तो सुख भी है, वीर्य भी है, चारित्र भी है, वितराग भी है, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रभुता, अनंत कर्तापना, अनंत कार्यपना, अनंत साधनपना, ऐसे अनंत गुण स्वरूप आत्मा है। श्रीमद् रामचंद्र में आता है, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, लेकिन आत्मा कौन इसकी खबर बिना केवल ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं भगवान की और गुरु की भक्ति करो, तो आत्मा मिल जाएगा, धूल भी नहीं मिलेगी। केवल गुरु गुरु सदगुरु सदगुरु कहने से, अरे सदगुरु तो परमात्मा भगवान है, परंतु उन्होंने क्या बताया है उसको समझे बिना वो केवल गुरु के सामने देखने से कुछ नहीं होने वाला। गुरु होते ही निमित्त रूप से, देशना में देशना लब्धि में गुरु का महत्व है, वो निमित्त रूप से है, पर गुरु कुछ तार देंगे और गुरु को आहोभाव करने से विनय करने से मुझे सम्यक तो होगा, ऐसी बात नहीं है। यानी इसको गुरु का अभी नहीं हो रहा, गुरु ने ही यह बताया कि तू अपने स्वयं का लक्ष्य कर, भगवान ने यह बात बताई। यानी हम भगवान की वाणी का लक्ष्य छोड़कर अपने आत्मा का अनुभव करने जाते हैं तो भगवान की अभिनय नहीं, नहीं उसमें, अरे उनके तो विनय है क्योंकि उन्होंने जैसा बताया वैसा हम कर रहे हैं। एक बहुत बार उदाहरण देते ना, छोटे बच्चे को बोले जा रहे बेटा पानी के लिए क्या, एक बार बताया दो बार बताया वो वहीं से खड़ा रहा, हम क्या कहते हैं, अरे जाना क्या बताया तुझे, आपने चार बार बताया ऐसा कहते हैं, मैंने सुना। तो उसको सुना कहेंगे कब, वो जाके पानी लेके आएगा तो होंगे हमने, हमारे बच्चे ने हमारा सुना। और हम भगवान की कितनी सुनते हैं, हम सुनाते भगवान को, जोर जोर से गाते हैं, पूजा करते हैं और क्या क्या, उनको टीका लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और क्या क्या करते हैं, दुनिया भर के लोग मालूम है क्या क्या करते हैं। भगवान ने क्या कहा है वो सुनने के लिए टाइम कहाँ है, भगवान को सुना दिया नमस्कार किया बस हो गया, धर्म हो गया। भगवान ही स्वयं कहते इसमें धर्म नहीं है, ये तो राग की क्रिया है ना। यहाँ कहते गुरु की भक्ति करो आत्मा मिल जाएगा, अरे धूल भी नहीं मिलेगी। श्रोता ऐसी भक्ति करने से जल्दी केवल ज्ञान हो जाए ना, गुरुदेव श्री राग जल्दी हो जाए, यह बात तो कही ना कि यह तेरा स्वभाव तो गुरु और परमेश्वर में भी नहीं है। अभी बात है ना, अन्य चेतन द्रव्यों में भी तेरा स्वभाव नहीं है, और यहाँ स्वभाव में एकाग्र होने से धर्म होगा। और ये तो गुरु का लक्ष्य छोड़ना तैयार नहीं है, भगवान का लक्ष्य छोड़ने को तैयार नहीं है, तो अपने स्वभाव का लक्ष्य कब करेगा वो, ये कह रहे। गुरु ने तो बताया कि ये कर, अभी वो तो छोड़ देता है। गुरु ने इतना समझाया, इतना हाँ समझाया, पर वो समझाया वो कार्यकारी कब होगा, जब अपना लक्ष्य करेगा तब, यही तो कह रहे। यह तेरा स्वभाव तो गुरु और परमेश्वर में भी नहीं है, तो तुझे एकाग्र कहाँ होना है। तो गुरु में और भगवान में एकाग्र होने से कुछ मिलेगा तो है ही नहीं। समझ में आया, अरे रे अनंत काल से 84 अवतार में रखड़ रहा है, आज तो वह थोर देखे ना, ये थोर समझते ना, ये कैक्टस एलोवेरा को सारा फुल ऑफ निगोद, वही तो
माने और भी है।
सभी कैक्टस में ये सब, सभी कैक्टस एलो, ये थोर तो खास वो तो बहुत होते हैं। अरे जैसे आलू प्याज में अनंत जीव है, वैसे इसमें अनंत है, ये मालूम नहीं लोगों को। पूरी हार माला थी, ओहो हो इस थोर की एक कणी में, देखो देखो आगे क्या लिखा है। हाँ अनंत जीव है ना उसमें, प्राणिक हीलिंग में कैक्टस, हाँ वो सब निगेटिव तो आपकी खींच लेते हैं। इस थोर की एक कणी में, देखो सुना भी, इस थोर की एक कणी, कणी यानी वो पिन पॉइंट जितनी कणी में असंख्य जीव, असंख्य एक्चुअली शिव शरीर होने चाहिए, असंख्य शरीर और एक एक शरीर में अनंत जीव, वह कब बाहर निकले और कब त्रस हो, ईयर कब हो, प्रभु तो ऐसा कहते हैं। और छड़ाला में भी आए ना, निगोद से निकल कर असंख्य शरीर चाहिए और उसमें एक एक में अनंत जीव, हाँ और एक एक शरीर में अनंत जीव, तो छड़ाला में आया है क्योंकि निगोद से निकल कर यल हो त्रस पर्याय में आए तो भी चिंतामणि रत्न को प्राप्त किया। यानी इतना दुर्लभ है, एकेंद्रिय में से निकलकर मरकर अनंत जीव है ना उसमें, तो अनंत तो एकेंद्रिय में ही रहते हैं और कदाचित कोई त्रस में जाता है। तो कहते वो त्रसपना मिलना भी कैसा दुर्लभ है, तो चिंतामणि रत्न मिलने जैसा दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न सुना है? वो रत्न के हाँ, आपके मन में जो इच्छा हो जावे वो फुलफिल हो जाती पूरी हो जाती। संख्या बंध जीवो लीलोत्री में पड़े हैं, क्योंकि अनंत जीव राशि तो वनस्पति में ही होती है, क्योंकि वनस्पति में प्रत्येक शरीर वाले और साधारण शरीर वाले दो भेद हैं। साधारण शरीर यानी एक जीव और उसके स्वामी अनंत जीव, एक शरीर और उसमें जीव अनंत। दूसरे किसी में नहीं, मात्र निगोद में। प्रत्येक वनस्पति में भी असंख्यात, साधारण कहो या निगोद को, वही तो बात है। साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। हाँ, बाकी एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, वो सारे असंख्यात जीव अन्य है। एकेंद्रिय जैसे वायु का एक, पृथ्वी का एक, हाँ उनकी संख्या बहुत बड़ी असंख्यात है, जिसको असंख्यात लोग कहते हैं। वो भी प्रमाण पर देखेंगे डिटेल में, तो बहुत बड़ा प्रमाण है, फिर भी वो अनंत नहीं है। थोर की पूरी वाड़ थी, उसे देखकर ऐसा लगा कि ये संख्या बंध जीव पड़े हैं। अरे वे कब त्रस हो, और त्रस हो तो भी चिंतामणि समान कहा है, वियड़ हो तो भी, आहा हा, त्रस होने के बाद भी मनुष्यपना कब मिले, मनुष्यपना मिले तो भी आर्य कुल में कब आए, आर्य कुल में आए तो भी जैन कुल में कब आए, जैन कुल में आने के बाद भी सच्ची बात सुनने कब मिले। देखो इतने जो ऑब्स्टेकल्स जिसको कहेंगे, दुर्लभ में दुर्लभ बातें, और हमें सब प्राप्त हुए हैं, सच्चा मार्ग भी मिल गया है। ये पैसे वैसे 2-5-10 लाख कमा लिए, उस धूल में कुछ नहीं है। वो कोई कह रहा था, ईरान का बादशाह था, उसके ईरान के आदमियों ने हल्ला करके निकाल दिया, वो 2000 करोड़ डॉलर ले गया, उसकी तो मोटी मोटी पेटी भर जाए। 2000 करोड़ डॉलर, एक डॉलर के 8 रुपए होते, अरे उस जमाने में 8 रुपए थे क्या? ऐसे 16000 करोड़ रुपए हो गए, ये कोई कह रहा था? हम कहाँ पेपर पढ़ते हैं, कोई कहता है वो सुन लेते हैं। 16000 करोड़ रुपए, वह तो पूर्व के कोई शुभ भाव से पुण्य बांधा हो, वह बाहर में ऐसे दिखता है, बाकी मरकर नरक में जाएगा। क्योंकि वह तो मुसलमान अरब है, मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, इसलिए मरकर नरक में जाएगा। हाँ हाँ भाई, उसे मालूम नहीं है कि मैं परलोक में कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, अभी साइबी में पड़ा है, लेकिन देह की स्थिति पूरी होते ही मरकर नरक में, वो तो निश्चित है न? 7 नरक है, उसमें से भले पहली नरक में जाए, जरा देना उनको, लेकिन पहले नरक में कम से कम 10000 वर्ष की आयु स्थित है नहीं, वर्ष की स्थिति है, ज्यादा से ज्यादा 1 सागर की है। 7वें नरक में 33 सागर की स्थिति है, 1 सागरोपम में 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम जाए, और एक एक पल्योपम के असंख्य वे भाग में असंख्य अबज वर्ष जाए, है ना? क्या कहा, पल्य कितना बड़ा है, उसके असंख्यात वे भाग में असंख्यात अरब वर्ष चले जाए। असंख्यात शब्द है, खाली अरब वर्ष नहीं कहा, असंख्यात अरब, तो पल्य कितना बड़ा होगा। और ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी पल्यों का 1 सागर होता है। कोड़ाकोड़ी समझते, एक करोड़ गुने करोड़ कोड़ाकोड़ी होते हैं, ऐसे 10 करोड़ × 1 करोड़, वो 10 कोड़ाकोड़ी हो गए, इतने पल्यों का 1 सागर वर्ष। अब 7वें नरक के तो ऐसे 33 सागर, यानी कितना काल होगा लंबा, हम इमेजिन नहीं कर सकते न? उसके एक क्षण के दुख सुन न सके, भाई क्या कहा, इतना वहां, इतना काल वहां बिताना है, और उसके एक समय के दुख भी सुन न सके। लेकिन भूल गया, यानी ये तो बहुत बार अनंतों बार वहां जाके आया है परंतु अब भी भूल गया है। रत्नकरण शावकाचार्य में कहते हैं, नरक के नरक का एक क्षण का दुख करोड़ों भाव में कोटि जीव से कह नहीं सकते। यानी कितना दुख, एक क्षण का दुख करोड़ों भवों तक कहे जाए और करोड़ों जीवों से, उस दुख की तुझे क्या बात करे, तू भूल गया भाई। हजारों और लाखों बिच्छू काटे और जो वेदना होती है उससे अनंत गुणी वेदना पहली नरक में 10,000 वर्ष की स्थिति में है। यहाँ तो एक बिच्छू काटे तो चीख निकल जाती है, भाई तूने आत्मा के भान बिना ऐसे भव किए हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कितना हूँ, इसके भान बिना ऐसे दुख सहन किए। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। एक क्षण के दुख करोड़ जीव से करोड़ भव में न कह सके भाई, उसकी शीत और अग्नि की वेदना। 1,00,000 मन का लोहे का गोला जवान लोहार ने टीप कर मजबूत किया हो, वह यदि पहली नरक में रखा जाए तो एक क्षण में जैसे अग्नि पर रखा हुआ घी पिघल जाता है वैसे लोहे का गोला पिघल जाए। प्रभु तुझे ऐसा हुआ है भाई, तू भूल गया है। ऐसी ऐसी 7 नरक नीचे है। एक नरक का नाम रत्न प्रभा है, नाम रत्न प्रभा है लेकिन दुख का पार नहीं है बापू। पहले नरक का ही नाम है रत्न प्रभा। एक साधु था, उसने एक वृद्ध माजी को कहा, माजी आपको रत्न प्रभा जाना है? उसने कहा, अरे महाराज रत्न प्रभा में तो आप जैसे जाते हैं, मेरे जैसी कहाँ जा सकती है। माजी को ऐसा था कि रत्न प्रभा यानी कौन जाने क्या होगा। रत्न प्रभा पहली नरक का नाम है, भगवान के सिद्धांत में यह पहली नरक है रत्न प्रभा। दूसरे का नाम है शर्करा प्रभा, ऐसे 7 नरक के नाम है। साधु ने माजी को कहा, माजी रत्न प्रभा आपको जाना है? तो माजी ने कहा, अरे महाराज वहां तो आप जैसे जाए, हम जैसे कहाँ से जाएंगे। रत्न प्रभा क्या है इसकी भी खबर नहीं है, वह तो नरक का नाम है, वहां कोई रत्न नहीं है। जैसे यहाँ आदमी को नाम देते हैं ना, वो आदमी मूर्ख जैसा, लेकिन नाम महावीर वीर ऐसे देते हैं ना। किसी का नाम पार्श्ववीर हो तो क्या वो पार्श्ववीर हो गया? ऐसे रत्न प्रभा नाम दिया तो क्या वहां रत्न हो गए? अरे बापू हा हा। 1,00,000 मन का लोहे का गोला 32 वर्ष के जवान लोहार ने उसे टीप टीप कर 6 महीना अग्नि में गर्म करके मजबूत किया हो, उसे वहां नरक में रखो तो पिघल जाता है, एक क्षण में पिघल जाता है। हम यहाँ नहीं देखते कोई ज्वालामुखी मुखी फटता है तो पर्वत के पर्वत उसके वो तो पत्थर भी पिघल कर बहने लगते। यहाँ तो लोहे की गोला, वहां की अग्नि कैसी होगी, वो भी पिघल कर। तो ये नारकियों के शरीर भी कैसे होगी ना, ऐसे तप्त हवा में भी वहां रहते भी, और ये क्या क्या बातें चलती वहां की। इतनी तो वहां अग्नि की पीड़ा है, और 7वें नरक में ठंडी की पीड़ा इतनी है। जैसे यहाँ बर्फ गिरे तो बैंगन जल जाते हैं ना, बैंगन गर्म बहुत होते हैं, वह बर्फ गिरे तो जल जाते हैं। इससे भी अधिक 7वीं नरक में शीत वेदना इतनी है कि 1,00,000 मन का लोहे का गोला यदि उस शीत वेदना में रखो तो पारा जैसे पिघल जाता है वैसे वह लोहे का गोला पिघल जाता है बापू। जैसे हमने कहते वो तो ऐसा चूरा हो जाता है ना कोई चीज का, इस तरह से ऐसी शीत वेदना। प्रभु तूने 33 सागर सहन की है, ऐसे अनंता सागर तूने सहन की है। क्योंकि भव परावर्तन में तो हमने देखा था एक एक समय से बढ़ते हुए भव हो तब गिनना, बीच में हीना दिखे तब मत गिनो। तो मिनिमम 10,000 वर्ष के जितने समय है उतने उतनी बार 10,000 वर्ष की शुरू करना, हमको टाइम गिनना। इसलिए ये अनादि से तू है ऐसा कहते हैं तो अनादि क्या चीज है? हाँ मिथ्या दृष्टि अवस्था में अनादि से इतने समय तो अनंत क्या होता है, तो क्या क्या क्या, तो ऐसे परावर्तन एक के बाद एक के बाद, यानी उसको अगर हम काउंट करने जाए तो एक एक परावर्तन में इतना अनंत काल जाता है तो हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि 10,000 वर्ष का एक भव होने के बाद वो वहां से मनुष्य 3 इंच कुछ तो हो जाएगा, हो सकता है वहां से एक इंद्रिय में चला जाए, असंख्यात पुद्गल परावर्तन नाम वो अनंत काल वहां जाए, फिर जाके वो नरक में आए, पर हो सकता है कि वो तो एक सागर का होकर गया, 10,000 वर्ष का ही होना चाहिए। ऐसे ऐसे 10,000 वर्ष के जितने समय उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु, उसके बाद एक समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय अधिक, 4, 33 सागर तक इतना सब हो जावे और फिर वो 10,000 वर्ष की नरकायु हो जाए, बीच में अन्य भव कितने करेंगे, भव नहीं गिनना परंतु उसका टाइम गिनना, हमने मीटर ऑन कर दिया है। अब इतना कितना लंबा काल आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पूरे नरक के सारे भव एक एक समय से बढ़ते हुए होने चाहिए, बीच में अन्य हो जाएंगे तो हाँ उसके टाइम गिनो, उसको क्रम में मत गिनो। तो ऐसा जब पूरा होगा तब जाके एक नरक भव परावर्तन हुआ, ऐसे एक एक गति संबंधी भव परावर्तन वो करता है, और ऐसे तो अनंतो बार की, एक बार नहीं, एक बार होने के कितना अनंत काल लगेगा ऐसे सारे, क्योंकि अनादि का अर्थ क्या है, बिगिनिंग ही नहीं ना, तो कितने अनंत ऐसे किए थे उसने, यानी हम उसको अगर सोच भी लेते हैं तो कांप उठते हैं कि अरे क्या, यानी हमने ऐसा ही काम किया, अभी क्या क्या जन्म मरण, जन्म मरण इसके अलावा कुछ नहीं किया है, और अगर अभी नहीं चेतेंगे तो यही चलता रहेगा। यानी ये ऐसा मौका आया है कि हमें ये सब बातें यहाँ आगम के द्वारा पता चल रही है, नहीं तो सामान्य मनुष्य को क्या पता है कहाँ ये भव परावर्तन क्या होता है क्या होता है, केवल ज्ञानी ने जानकर बताया है और उसके अनुसार हम यहाँ जान रहे। परंतु इस वाणी पर तो जरा भी भरोसा नहीं है उसको। आज कोई भाई आए थे, वो कह रहे थे वो पैथोलॉजी में ऐसा चलता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी नाम लेकर भी उन्होंने बताया, बहुत सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भेजा पेशेंट और पैथोलॉजिस्ट पूछ लेता है क्या क्या लिखना है इसमें, बड़े बड़े हाँ तो कहते ऐसा लिख दो, ये इतना लिख दो रिपोर्ट। हाँ इतना करना है
वो दवा
तो ऐसे बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत यानी ऐसी बात निकली थी, फिर भी उस पर कितना भरोसा है, ये हमारी इतनी ब्लड शुगर है, हमारे इतना ये है, हमारे उतना ये है, ये सब चलता है। और यहाँ तो केवल ही भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जानी हुई बातें हैं, मगर उसको तो पढ़ने को सुनने को तैयार नहीं है, उसका भरोसा तो आगे की बात है, यानी वो सुने और समझे, उसको सही विचार करे तो उसका कल्याण हो जावे, उसके लिए उसको कुछ नहीं करना है, ना कुछ किसी को देना है लेना है, ना पैसे की बात है, ना अन्य किसी बात है, ना कुछ शारीरिक बल चाहिए, नहीं तो और कुछ अन्य चाहिए उसके। कोई कह सकता है अरे मैं उपास नहीं कर सकता, मैं इतना चल नहीं सकता, मैं ये नहीं यात्रा कर सकता, अरे पर यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखा ना अनंता सागर तूने सहन की है, पर तू भूल गया, भूल गया इसलिए नहीं था ऐसे कह सकते थे, जन्म के बाद 12 महीने क्या था इसकी खबर है, अब माँ के पेट में कैसे बिताए 9 महीने वो उसकी तो कहाँ खबर है, यानी तू जन्मा था और अभी बड़ा हो गया है तो 1 साल भर तूने क्या क्या किया कहाँ तुझे खबर है, माँ ने कैसे दूध पिलाया मालूम है, मालूम नहीं है इसलिए नहीं था, मालूम नहीं इसलिए नहीं था ऐसा कौन कहेगा, ऐसे जगत के दुख तूने अनंत बार सहन किए इसकी तुझे खबर नहीं, तुझे मालूम नहीं है इसलिए नहीं था, आत्मज्ञान और समय दर्शन के बिना मरकर उसने ऐसे भव किए हैं बापू, वह बात यहाँ समझते हैं, रुकेंगे अब यहाँ पर। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो। अरविंद भाई।